सुर्खियों में नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद। आज हम चर्चा करेंगे भारत और ब्राजील के बीच द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ भारत यात्रा पर आए ब्राजील के राष्ट्रपति लुई इनासियो लुला दा सिल्वा के बीच नई दिल्ली में आज हुई बैठक में बहुपक्षीय मंचों में सहयोग और सुधार, वैश्विक शासन और वैश्विक दक्षिण से संबंधित मुद्दों सहित पारस्परिक हित के विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श हुआ। भारत और ब्राजील ने आज डिजिटल साझेदारी, दुर्लभ खनिज तथा महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग, लघु और मध्यम उद्यम तथा तटीय क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के बीच गहराते संबंधों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़ गई हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। प्रोफेसर जोशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
धन्यवाद सोनू जी, सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार।
प्रोफेसर जोशी, आज जो ये द्विपक्षीय बातचीत हुई हमारे प्रधानमंत्री और ब्राजील के राष्ट्रपति के बीच, इसको आप कितना महत्वपूर्ण मानती हैं हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए? जो हमारे 20 साल से एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसको ये कितना और एक नया डायमेंशन देगी, कितना आगे ले जाएगी, आपसे जानना चाहेंगे।
ब्राजील वो पहला लैटिन अमेरिकन राष्ट्र था जिसने भारत के साथ 1948 में अपने कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। 2006 में दोनों देशों ने अपने संबंधों को आगे बढ़ाते हुए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्थापित की। दोनों ही देश अपने द्विपक्षीय संबंधों के अलावा यदि हम देखें तो G20, इब्सा, G4, ब्रिक्स जैसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में साथ मिलकर के काम करते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 2020 में तत्कालीन ब्राजीलियन राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो हमारे रिपब्लिक डे परेड के मुख्य अतिथि भी बनकर आए थे। और हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि किस प्रकार से भारत और ब्राजील संबंधों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की दृष्टि से न सिर्फ द्विपक्षीय सहयोग को, साउथ साउथ कोऑपरेशन को भी आगे बढ़ाते हुए एक नई यात्रा शुरू की है। तो इसी कड़ी में ब्राजीलियन राष्ट्रपति लुई इनासियो लुला द सिल्वा 5 दिन की ऑफिशियल विजिट पर हैं भारत में। और आप ट्रेड का क्षेत्र देखें, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र देखें, क्रिटिकल मिनरल्स का क्षेत्र देखें, बायोफ्यूअल और सोलर अलायंस का क्षेत्र देखें यानी नवीकरणीय ऊर्जा का, या हम ग्लोबल साउथ के देशों के नेतृत्व की आवाज की बात करें, तो इस दृष्टि से इन क्षेत्रों में दोनों ही देश अपनी पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कमिटेड दिखाई पड़ते हैं, उद्यत दिखाई पड़ते हैं। और लुला के साथ में यदि हम देखें तो 250 से 300 बिजनेस लीडर्स आए हैं, अलग अलग कंपनीज के सीईओज आए हैं। भारत की बहुत सारी आईसीटी कंपनीज के वहां हेडक्वार्टर्स हैं, ऑपरेशन सेंटर्स हैं, जैसे कि एचसीएल है, महिंद्रा है, टीसीएस है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि लुला के साथ बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स भी आए हैं ब्राजील के। तो फिर अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो डिजिटल पार्टनरशिप हो, क्रिटिकल मिनरल्स का क्षेत्र हो, स्टील का क्षेत्र हो, बायोफ्यूअल अलायंस की हम यदि दृष्टि से देखें, ब्राजील बहुत पहले से 70 के दशक से इस एक क्षेत्र में काम कर रहा है, या फिर अपने व्यापार की दृष्टि से देखें तो अभी तक 15.2021 बिलियन USD का हमारा दोनों देशों के बीच का व्यापार रहा है। इसको अगले कुछ वर्षों में 20 बिलियन USD करने का लक्ष्य इस बार की ऑफिशियल विजिट में लुला के रखा गया है। और बहुत सारे महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए हैं, अनाउंस हुए हैं। 10 जो की MOUs हैं वो फाइनलाइज हुए हैं।
जी, आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल सेक्टर्स हैं जिनमें हम लोगों का आपसी सहयोग है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आज जो ऊर्जा में हमारा सहयोग है उस पर क्या कहा?
ऊर्जा सहयोग हमारे संबंधों का एक मजबूत स्तंभ रहा है। हाइड्रोकार्बन के साथ साथ हम रिन्यूएबल एनर्जी, एथेनॉल ब्लेंडिंग, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, ऐसे अनेक क्षेत्रों में भी सहयोग को और अधिक गति दे रहे हैं। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में ब्राजील की सक्रिय भागीदारी ग्रीन फ्यूचर के प्रति हमारे साझा संकल्प को दर्शाती है।
प्रोफेसर जोशी, जो बात करी प्रधानमंत्री ने कि दोनों देशों के बीच इतना कोऑपरेशन है एनर्जी सेक्टर में, जो इतना क्रिटिकल सेक्टर है, और वहां के राष्ट्रपति हैं लुई इनेशियो लुला दा सिल्वा, उन्होंने भी ये बल देकर कहा कि दोनों ही सुपर पावर्स हैं, इंडिया और ब्राजील। आपको लगता है कि हमारी अगर घनिष्ठता होती है तो इससे ग्लोबल साउथ को बहुत बल मिलता है?
निश्चित तौर पर, और ये ऊर्जा सहयोग का एक ऐसा क्षेत्र है सोनू जी जिसमें दोनों देशों के पास अपने अपने स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ्स हैं, और इनके साथ दोनों ही देश जब आगे बढ़ते हैं तो एक विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है, न सिर्फ बायलेटरली बल्कि ग्लोबल साउथ को मजबूत बनाने की दृष्टि से और वैश्विक लक्ष्यों को अपना योगदान देने की दृष्टि से। तो मैं आपको बताऊं कि यदि हम ब्राजील की ओर देखें तो अमेरिकाज में भारत का सबसे बड़ा आज की तारीख में एक अपस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। 2026 में हमारे भारत पेट्रोलियम ने 780 मिलियन यूएसडी की एक डील जो है वो ब्राजील का जो ऑयल एंड गैस की कंपनी है पेट्रोब्रास उसके साथ क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समझौते पर डील साइन की है, और ये 2026 से एक्टिव हो चुकी है ये डील। तो हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में दोनों देश सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा बायोफ्यूल्स जो विकसित भारत 2047 के साथ साथ ग्लोबल साउथ की दृष्टि से और जो नवीकरणीय ऊर्जा को बल देने का अपना एक वैश्विक लक्ष्य है उस दृष्टि से भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में दोनों ही देश बहुत मजबूती के साथ आज काम कर रहे हैं। ये जो बायोफ्यूल अलायंस है इसकी हमने घोषणा जब हमने G20 को होस्ट किया था भारत में 2023 में हमने की थी, और इसमें ब्राजील कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ काम कर रहा है क्योंकि इसे क्षेत्र में 70 के दशक से ब्राजील ने काम करना शुरू कर दिया था। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में हमारा को फाउंडर है ब्राजील, और दोनों ही देश इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को लेकर के बड़ा काम कर रहे हैं। क्रिटिकल मिनरल्स की दिशा में भी यदि हम देखें तो विगत कुछ वर्षों में कुछ हिस्टोरिक एमओयू साइन हुए हैं रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के, और इनका जो उद्देश्य है वो न सिर्फ दोनों देशों के बीच बल्कि पूरे ग्लोबल साउथ में जो सप्लाई चेन्स है क्रिटिकल मिनरल्स की उनको निर्बाध बनाना है, उनको और रेजिलियंट बनाना है, और इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं और दूसरे तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें इन क्रिटिकल मिनरल्स का उपयोग होता है उनको सुदृढ़ बनाना है। इसके साथ साथ तकनीक और डिजिटल इनोवेशन के क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि दोनों देशों ने डिजिटल पार्टनरशिप फॉर फ्यूचर ऐसा एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन बनाया है और जो 2026 से एक्टिव है, और भारत का जो DPI है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम सभी जानते हैं कि कितनी बड़ी सक्सेस स्टोरी है पूरी दुनिया के लिए। तो ब्राजील में एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर DPI हम कर रहे हैं, और जिस तरह से हमारा UPI है उस तरह का डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन हम ब्राजील का डेवलप कराने में उसकी सहायता कर रहे हैं। डिफेंस और स्पेस के क्षेत्र में भी बड़ा काम दोनों देश कर रहे हैं, और इससे न सिर्फ दोनों देशों के बीच, जब हम ग्लोबल साउथ की और तमाम इमर्जिंग इकोनॉमीज की ओर दृष्टि डालते हैं तो उन्हें आगे बढ़ने में निश्चित तौर पर सहायता मिलती हुई दिखती है।
तो आपने बहुत ही खूबसूरती से बताया हमें कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं हमारी अर्थव्यवस्था के जिसमें हमारा आपसी सहयोग बहुत ही कहें कि क्रिटिकल है, और हम सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने हमें किस तरह से ये बताया कि जो हमारी सप्लाई चेन है उसमें जो मजबूती जिसकी आपने भी जिक्र किया कि वो कितना जरूरी है क्योंकि हाल ही में हम उसमें बहुत समस्या झेल चुके हैं उसके बारे में उन्होंने बताया, और डिफेंस कोऑपरेशन की महत्व के बारे में भी बताया।
क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ में जो समझौता हुआ है वो रेजिलिएंट सप्लाई चेन के निर्माण में एक बहुत बड़ा कदम है। डिफेंस के क्षेत्र में भी हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। ये एक दूसरे के प्रति भरोसे और रणनीतिक तालमेल का बेहतरीन उदाहरण है। हम इस विन विन पार्टनरशिप को आगे भी और मजबूत करते रहेंगे।
ये जो विन विन पार्टनरशिप की उन्होंने बात की है, जो भरोसा एक दूसरे पर बढ़ रहा है उसकी बात की है, उसका एक प्रमाण ये है कि लगभग 300 लोगों का जो बिजनेस डेलीगेशन है वो प्रेसिडेंट के साथ भारत आया।
बिल्कुल, यही मैंने आपसे कहा कि 250 से 300 बिजनेस लीडर्स, एक दर्जन से अधिक मंत्री ब्राजील के इस वक्त लूला के साथ डेलीगेशन का भाग बन के भारत में है, और जो अलग अलग क्षेत्रों को हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें पब्लिक के साथ साथ प्राइवेट पार्टनरशिप की भी बात दोनों देश कर रहे हैं जिसमें इन उद्योगपतियों की और इन तमाम एंटरप्रेन्योर्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती है। तो मैं आपको उदाहरण दूं कि जब हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, डिफेंस और स्पेस कोलैबोरेशन की बात करते हैं, तो दोनों ही देश जो है पिछले कुछ वर्षों में, विगत 10 वर्षों में हमने देखा है कि दोनों ने इस एक क्षेत्र में कितनी रफ्तार पकड़ी है साथ में काम करने की दृष्टि से, और यहाँ पर पब्लिक के साथ साथ प्राइवेट पार्टनरशिप और प्लेयर्स को इन्वॉल्व करने की भी बात दोनों ही देश कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जॉइंट R&D में हम साथ काम कर रहे हैं, हम स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स के को प्रोडक्शन को लेकर के काम कर रहे हैं, मिलिट्री शिप्स के को प्रोडक्शन पे हम काम कर रहे हैं, अलग अलग एयरक्राफ्ट और ब्राजील के जो अलग अलग तकनीकी सहयोग के साथ हम अपने मेक इन इंडिया को भी आगे बढ़ाने की दृष्टि से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो एंटरप्रेन्योर एंटीनोर्स हैं, इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती है। स्पेस कलेब्रेशन में भी हमारी दोनों की जो स्पेस एजेंसीज हैं वो सैटेलाइट ट्रैकिंग को लेकर, डेटा शेयरिंग को लेकर के काम कर रही है।
प्रेसिडेंट डा सिल्वा ने एक और बात कही कि दोनों देश शांति चाहते हैं, और उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि वो किसी भी रूप में आतंकवाद का समर्थन नहीं करते। और उन्होंने एक और चीज कही कि जो लड़ाइयां हैं, जो भी युद्ध है, वो होने चाहिए भूख के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, और जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है उसके खिलाफ। ये आपको कितना इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट लगता है ये देखते हुए कि अभी विश्व में कई देश हैं जो इस क्लाइमेट चेंज के जो एक समस्या है उसको इतना महत्व नहीं दे रहे हैं।
यदि हम ब्राजील की ओर देखें और लूला को देखें, तो भारत पर दुर्दांत पहलगाम अटैक के बाद और ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री G20 और ब्रिक्स के जो अलग अलग फिर हमारे सम्मेलन हुए, तो ब्रिक्स का जो शिखर सम्मेलन हुआ उसमें शिरकत करने के लिए वो ब्राजील पहुंचे थे, और वाया घाना अर्जेंटीना होते हुए वो पहुंचे थे। और जब वो ब्राजील पहुंचे थे तो लूला ने इन्हीं शब्दों से उनका स्वागत किया था कि भारत के साथ, भारत की आतंकवाद की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर के ब्राजील साथ खड़ा है। भारत पर हुए आतंकवादी हमले की उन्होंने तब भी निंदा की थी, आतंकवादी संगठनों की निंदा की थी और तमाम ऐसे देशों की भर्त्सना की थी जो आतंकवादी गतिविधियों को पल्लवित और पोषित करते हैं। और आज के जिस माहौल में हम रह रहे हैं सोनू जी, जिसमें हम देख रहे हैं कि दो युद्ध लगातार चल रहे हैं, और इसके अलावा हम समय समय पर देखते हैं कि स्थितियां ऐसी विकट बन जाती हैं जैसे अभी अमेरिका और ईरान के बीच बनी हुई है, तो हमें लगता है कि युद्ध के नए जो थिएटर्स हैं वो भी हमें खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे। इनसे न सिर्फ आर्थिक नुकसान हो रहा है, सामरिक रणनीतिक नुकसान हो रहा है, वैश्विक शांति और सुरक्षा डिस्टर्ब्ड हुई है, हम देखें सप्लाई चेन्स भी बाधित हुई हैं। तो ग्लोबल साउथ के जो ये देश हैं जो अपनी अर्थव्यवस्था को लगातार प्रमोट करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए फिर चुनौतियां उत्पन्न होती हैं, अपार्ट फ्रॉम जो शक्तिवान जो देश हैं वो जो कुछ भी झेल रहे हैं। तो ऐसे में लूला का ये स्टेटमेंट बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ब्रिक्स की जो थीम थी जो ब्राजील ने होस्ट किया, इसके पहले यदि हम देखें और G20 जो ब्राजील ने होस्ट किया यदि हम उसको देखें, तो फिर हमें समझ में आता है कि किस तरह से भारत का जो दर्शन है, चाहे हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करें, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, जलवायु परिवर्तन को रोकने के प्रति अपने कमिटमेंट की बात करें, इन तमाम लक्ष्यों को लेकर के, और एक इक्विटेबल समाज हो, ऑल इंक्लूसिव समाज हो, इसकी बात लूला ने भी की है, और यही बात भारत की विदेश नीति में भी हमको नजर आती है, यही बात हमारे प्रधानमंत्री भी करते हैं। तो यहाँ एक सामने दिखाई पड़ता है, और जब सामने दिखाई पड़ता है तो फिर एक भरोसा और कमिटमेंट दोनों हमें फिर रिश्ते में आते हुए दिखाई पड़ते हैं।
इस संदर्भ में मैं इस पर भी आपकी टिप्पणी चाहूंगी कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो हमारे सभी प्रायोरिटी एरियाज हैं, लेकिन उन्होंने खासतौर पे सुपर कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर्स, ब्लॉकचेन, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इनका भी जिक्र किया, और उन्होंने ये कहा कि टेक्नोलॉजी इंक्लूसिव होनी चाहिए। इशारा है कि पूरे विश्व को एक साझे रूप से आगे बढ़ना चाहिए।
निश्चित तौर पर, और ये बात भारत लगातार कर रहा है, और इसका उदाहरण हम हर बार देते हैं। हमने जब G20 होस्ट किया था तो हमने अफ्रीकन यूनियन को उसमें परमानेंट मेंबर की तरह जुड़वा के अपने इस ऑल इंक्लूसिविटी का जो हम संदेश देते हैं उसको हमने सत्यापित करके बताया था। भारत ने ये संदेश पूरे विश्व को दिया था कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंच, तमाम अलग अलग जो मिशन है और जो विजन है वैश्विक स्तर पर, वो ऑल इंक्लूसिव होना चाहिए, उसमें सभी की भागीदारी होनी चाहिए, और उसमें इनफैक्ट जन भागीदारी होनी चाहिए। और इसका दूसरा उदाहरण हम देखते हैं कि अभी हाल ही में जो AI समिट हमने होस्ट किया, वो विश्व का सबसे बड़ा AI समिट बन गया है, जिसमें 100 से अधिक कंपनीज के CEOs, 20 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 100 से अधिक देशों का पार्टिसिपेशन हमने देखा, और लाखों की संख्या में लोगों ने इसमें भागीदारी करी। तो इसके माध्यम से भारत लगातार ये संदेश देता है कि जब हम टेक्निकल कोऑपरेशन की बात करते हैं, चाहे बेसिक टेक्नोलॉजी हो या AI जैसी भविष्यपरक टेक्नोलॉजी, या हम जब बायोफ्यूल्स की दृष्टि से, स्पेस कलेबरेशन की दृष्टि से, डिफेंस की दृष्टि से टेक्नोलॉजीज की बात करें, तो उसमें जो तकनीकी सहयोग हो वो ऑल इंक्लूसिव हो, उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अलावा अलग अलग स्टेक होल्डर्स और जनता की भागीदारी होनी चाहिए, और जो फोकस है वो इनोवेटिव रिसर्च पर होना चाहिए, जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ वैश्विक लक्ष्यों को अपना योगदान दे सके। और यही बात है हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी कही, और यही जो बात है ये हमें ब्राजील की तरफ से भी आते हुए दिखाई पड़ती है।
प्रोफेसर जोशी, भारत और ब्राजील के बीच गहराते द्विपक्षीय संबंधों पर इस गहन चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद।
श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में